हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 16। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तम श्लोके भक्तिरभवति नष्टिके। आराध्यो भगवान् रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादरः न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे बिभस्व मृत्युमेतदेव गोविंद दामो धरमाधवेति। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम्। चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। मूकं कुरुतु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। श्लोक संख्या 16। कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। गजेंद्र कहते हैं गुणान ऋच्छन् నచిదుష్మపాయ తక్షోభవిస్ఫూర్జితమానసాయ నైష్కర్మ్యభావేన వివర్జితాగమ స్వయం ప్రకాశాయ నమస్కరోమి గుణారరిచ్ఛన్ నచిదుష్మపాయ తక్షోభవిస్ఫూర్జితమానసాయ నైష్కర్మ్యభావేన వివర్జితాగమ స్వయం ప్రకాశాయ నమస్కరోమి గుణారరిచ్ఛన్ నచిదుష్మపాయ తక్షోభవిస్ఫూర్జితమానసాయ నైష్కర్మ్యభావేన వివర్జితాగమ స్వయం ప్రకాశాయ నమస్కరోమి. శబ్దార్థ గుణార రిచ్ఛన్ అర్థాత్ గుణ మతలబ్ క్వాలిటీ నహీ, గుణ మతలబ్ జో ప్రకృతి కే తీన్ గుణ హోతే హై, సత్వగుణ రజోగుణ ఔర్ తమోగుణ, ఇన్సే బన్కర్ యే పూరీ ప్రకృతి ఇస్ సంసార్ మే జో కుచ్ భీ హై ఉస్ సబ్ పర్ యే గుణ కా అసర్ హై. తో ఇస్ సంసార్ మే జో కుచ్ భీ భౌతిక వస్తువే హై ఉన్కో యే కహా జాతా హై గుణ. జైసే భగవాన్ భగవద్ గీతా మే కహతే హై త్రిగుణ గుణమయ భావ, కి ఈ జో తీన్ గుణో సే యుక్త యే మేరీ ప్రకృతి హై. భగవాన్ కహతే దైవీ యేషా గుణమయీ మమ మాయా, యే జో మేరీ మాయా మేరీ భౌతిక ప్రకృతి హై వో తీన్ గుణో, యే జో తీన్ గుణ హై తీన్ గుణ వాలీ హై. తో ఇస్కా మతలబ్ యహాన్ పర్ హై గుణార రిచ్ఛన్, ఇస్కా మతలబ్ హై అణిజ్ కా మతలబ్ హోతా హై జిస్ తరహ కాస్ట్ అణిజ్ మతలబ్ జో కాస్ట్ హై నా అరణి, అరణి బోల్తే హై ఉస్కో, అరణి యని కాట్ కే అందర్ జిస్ ప్రకార్ ఉష్మ పాయ యని జిస్ ప్రకార్ అగ్ని హోతీ హై. అబ్ దేఖో జితనీ భీ లకడియాన్ హోతీ హై ఉన్కే అందర్ అగ్ని సమాయి హుయి హోతీ హై. జైసే బహుత్ సారా లకడియోన్ కా ఢేర్ హై, ఉస్కే ఉస్ పే అగర్ హమ్ ఛోటీ సీ చింగారీ భీ గిరాయేంగే నా తో పూరీ లకడియోన్ మే అగ్ని ఇత్నీ తీవ్రతా సే భడక్ ఉఠేగీ. హమ్నే తో థోడీ సీ అగ్ని లగాయి హై తో దూసరీ సారీ అగ్ని కహాన్ సే ఆయి, వో పహలే సే హీ ఉస్ లకడీ కే అందర్ థీ. లేకిన్ వో క్యా థీ, ఛన్న. ఛన్న కా మతలబ్ హోతా హై ఆవృత హై, వో ఛుపీ హుయీ హై, వో డకీ హుయీ హై. జిస్ ప్రకార్ అగ్ని జో హై వో ఛిపీ హుయీ హై లకడీ కే అందర్, ఉసీ ప్రకార్ భగవాన్ జో హై వో భీ గుణో, గుణాన అర్థాత్ గుణ కా మతలబ్ హోతా హై ప్రాకృత వస్తువే ద్వారా, ఇస్ భౌతిక జగత్ మే జో భీ హై వో సబ్ ఉన్, మతలబ్ భగవాన్ ఆధ్యాత్మిక హై మగర్ వో ఇస్ సంసార్ మే దిఖతే నహీ హై. క్యూంకి పిచ్లే శ్లోక్ మే గజేంద్ర నే క్యా కహా హై, నమో నమస్తే ఖిల కారణాయ నిష్కారణాయ అద్భుత కారణాయ, కి ఇస్ సంసార్ మే జో కుచ్ భీ హై ఉస్కా కారణ ఆప్ హో, ఆప్ స్వయం నిష్కారణ హో ఆది హో, పరంతు బాకీ సమస్త వస్తువో కే ఆది కారణ ఆప్ హో. ఔర్ ఇస్కే అలావా కహతే నమో పవర్గాయ పరాయణ, జో బహుత్ శ్రేష్ఠ వ్యక్తి హై, జో శ్రేష్ఠ ప్రాణి హై, మతలబ్ శివ బ్రహ్మ సబ్కి ఆప్ ఆరాధ్య హో, క్యూంకి వో భౌతిక వస్తువే చాహతే నహీ హై, వో ఆధ్యాత్మిక జగత్ చాహతే హై. జో తో సారే జితనే భీ సర్వాగమామ్నాయ మహాణవాయ, కి జితనే భీ వేద శాస్త్ర హై ఉన్కా సార్ భగవాన్ కి భక్తి హై, ఔర్ సమస్త శ్రేష్ఠ జీవ భగవాన్ హీ కా ఆశ్రయ లేతే హై, తో ఫిర్ భగవాన్ దిఖాయి క్యూ నహీ దేతే హై నా. యే ప్రశ్న ఉఠతా హై, జబ్ సబ్ కుచ్ భగవాన్ సే నిక్లా హై తో ఫిర్ భగవాన్ దిఖతే క్యూ నహీ హై. తో ఇస్కా ఉత్తర్ దేతే హువే గజేంద్ర కహతే హై, గుణారణిచ్ఛన్ నచిత్ దుష్మ పాయ, జిస్ ప్రకార్ లకడీ సే అగ్ని ఢకీ హుయీ హోతీ హై. లేకిన్ యహాన్ పర్ యే సోచనా చాహియే కి లకడీ అగ్ని కో నహీ ఛిపాతీ హై నా, అగ్ని కే స్వయం ఛిప్ జాతీ హై లకడీ కే అందర్. ఔర్ జబ్ అగ్ని భడక్తీ హై तो समस्त लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है। यानी कि लकड़ी के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो अग्नि को छुपा सके। अग्नि जब प्रकट होना चाहती है तो प्रकट होती है और फिर समस्त लकड़ियों को भस्म कर देती है। इसका मतलब ये है कि अग्नि के अंदर ज्यादा पावर है। उसी प्रकार ये जो भौतिक गुण है उसके द्वारा भगवान खुद को छिपा देते। भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समन्विता मूढ़ो हम ना भी जानाती लोकोम। ये जो भौतिक जगत में बुद्धिहीन व्यक्ति जान ही नहीं सकते हैं कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को छिपा देता हूँ अपनी योग माया द्वारा। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान अपनी योग माया अपनी त्रिवर गुणमयी शक्ति के द्वारा प्रच्छन्न होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, तत्क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय। इसका मतलब है जब पहले कोई भी नहीं होता है, सिर्फ भगवान होते हैं, और उसके बाद भगवान क्या करते हैं, इन गुणों के सम्मिलन करने से तत्क्षोभ यानी प्रकृति के क्षोभ यानी प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उनके क्षोभ से उनको डिस्टर्ब करके, मतलब वो सब कौन करता है, भगवान ही करते हैं उन गुणों से, उन गुणों को मिलाकर विस्फूर्जित, विस्फूर्जित मतलब एक में से अनेक विस्तार करते हैं अपना। पहले वो स्वयं होते हैं और फिर वो भगवान के अंदर एक ऐसी इच्छा होती है या भगवान अपनी इच्छा करते हैं कि मैं पहले एक हूँ तो उससे अनेक बन जाऊं। तत्क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय, मतलब जब सृष्टि का प्रारंभ होता है और भगवान इन तीनों गुणों में विषमता पैदा करते हैं और फिर तब क्या करते हैं, तब कृष्ण इस विषमता से उत्पन्न हृदय, भगवान के हृदय में भगवान स्वयं से एक इच्छा करते हैं, एको हम बहुस्यामी, कि अभी मैं एक हूँ तो मैं बहुत बहुत बन जाता हूँ, अपना विस्तार करना चाहते हैं और फिर अपने अंदर से ही प्रकृति बहिरंगा प्रकृति को जन्म देते हैं और फिर गुण ये सब जो महातत्व है वो उसका उद्घाटन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं अपने अंदर से ही, भगवान के अंदर से ही कारण दक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु निकलते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। ये सब भगवान अपने में से ही सब निकालते हैं। तो ये कहते हैं गजेंद्र कि क्योंकि पहले आप अग्नि, जिस तरह अग्नि लकड़ी में छिपी हुई होती है उसी प्रकार आप भी भौतिक आवरण से ढके हुए होते हो, हमें नहीं दिखते, एक जीव को नहीं दिखते, आप स्वयं एक में से अनेक बन जाते हो और दिखते कैसे हो, जीव कैसे समझे आपको, यानी कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिस उपाय से हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं नैष्कर्म्य भावे न विवर्जितागम। नैष्कर्म्य भावे यानी जब जीव भगवान की भक्ति करता है, नैष्कर्म्य का मतलब होता है वो कार्य जिसका कोई आपको रिजल्ट नहीं चाहिए, मतलब भगवान की भक्ति जो भगवान को, पहले ही हम लोगों ने नैष्कर्म्य की व्याख्या की थी। तो जब जीव भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, सरेंडर करता है, समर्पण करता है, तो भजन के प्रभाव से प्रेम उत्पन्न होता है और जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो अन्य समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। जीव के हृदय में केवल एक ही इच्छा रह जाती है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। इसलिए इस स्थिति को नैष्कर्म्य कहते हैं, क्योंकि उस अब वो जो भी करेगा किसके लिए करेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर करेगा, कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करेगा, तो वो नैष्कर्म्य हो जाएगा। और नैष्कर्म्य भावे न विवर्जिता, विवर्जितागम का मतलब है विधि निषेध, विवर्जित मतलब जो मना किए गए हैं, आगम मतलब जो वेदों में हमें करने के लिए कहा गया है। अब जो हमें वेदों में करने के लिए कहा गया है और जिनकी शास्त्रों में मना की गई है वो उन सब, वो व्यक्ति जो भगवान की परम भक्ति में आ जाता है उसके लिए ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, यानी कि ये सब छोटे धरातल पर है। जब हम भक्ति का जो उच्च प्लेटफॉर्म है ना उसमें ये सब नहीं होता है। जब तक अभी हम प्योर डिवोशन सर्विस में नहीं आते हैं तब तक हमें बताया जाता है कि तुम वर्ण आश्रम, इस वर्ण के हो, इस आश्रम के हो, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। लेकिन जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जीव को पता चल जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं वास्तव में आत्मा हूँ। जैसे महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्र न च नरपति, न वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गिरपति, न वानस्थो यतुर्वा, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ और ना सन्यासी हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना शूद्र हूँ, ना वैश्य हूँ और ना क्षत्रिय हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो बताते हैं, गोपी भर्तु पद कमल दास दास दासानो दास। तो वास्तव में जिसे ये पता चल जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण की सेवा करना है, तो बाकी जितने भी शास्त्रों में विधियां हैं, जितने निषेध हैं, वास्तव में शास्त्र क्या कहता है, पद्म पुराण में श्लोक आता है कि जितनी भी विधियां हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सब का वास्तविक जो एक विधि निषेध है जो कि बाकी सारी विधि निषेध उसके किंकर है, यानी सर्व विधि निषेधाय सर्व ए तयोर एव किंकर, एक ही विधि है, एक ही निषेध है। क्या है वो? है स्मर्तव्य सततम विष्णु, कि जीव को एक ही विधि है, एक जीव के लिए, एक भक्त के लिए, स्मर्तव्य सततम विष्णु, कि जीव को हर एक क्षण में भगवान को स्मरण रखना चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। और उसमें क्या, जब जीव कृष्ण को स्मरण करता है तो भले वो किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ भी कर रहा है, अगर वो कृष्ण को याद कर रहा है तो फिर वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कृष्ण ने मना किया। कृष्ण को स्मरण करने का मतलब है आप कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे जो कि कृष्ण को पसंद नहीं है, है ना। कृष्ण को स्मरण मतलब आप हर समय कृष्ण को देख रहे हो, कृष्ण को रियलाइज कर रहे हो, तो आप कुछ ऐसा कैसे खा सकते हो जो कृष्ण को अच्छा नहीं लगे, कुछ ऐसा कैसे बोल सकते हो जो कृष्ण को पसंद नहीं हो, कुछ कार्य ऐसा कैसे कर सकते हो। जैसे हम अपने किसी बड़े से भी, जैसे घर माता पिता भी होते हैं, उनके सामने जब वो हमारे सामने होते हैं तो कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो उनको पसंद नहीं लगता, है ना। हम सोचते हैं कि नहीं, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा या पापा को अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर हम वो कार्य नहीं करते हैं। फिर क्या सोचते हैं, जब वो नहीं होते तो करते हैं, है ना, छिपके करते हैं। लेकिन स्मर्तव्य सततम विष्णु का मतलब है कि हर समय, हर क्षण आप कृष्ण को देख रहे हो अपने साथ में, उसको, उनको याद रख रहे हो, और आप वही कार्य करोगे जो कृष्ण को अच्छा लगे। तो एक ही विधि है भक्त के जीवन की, एक ही विधि है कि वो हर क्षण कृष्ण को याद रखता है, हर कार्य करते वक्त कृष्ण को याद रखता है। भगवान कहते हैं 9.27 में, यद कृषि यदश्नासी यद्युहोसी दतासी यद यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पण, कि तुम जो कुछ कार्य करते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण कर दो। तो फिर अगर हमें सदैव भगवान याद होंगे तो हम, जीव जो है वो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा, फिर कृष्ण तृप्ति के लिए कार्य करेगा। एक ही विधि होती है जीवन के, भक्ति के जीवन में, कि वो सदैव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। और एक ही निषेध होता है, निषेध मतलब जो कार्य उसको नहीं करना है, वो क्या है, विस्मर्तव्य न जातुचित, यानी एक क्षण भी उसके जीवन में ऐसा नहीं आता है जब भगवान को वो भूल जाए, या कोई कार्य ऐसा नहीं होता उसके जीवन में जो करते वक्त उसे कृष्ण की का स्मरण ना आए, जो करते वक्त उसे ये ना लगे कि कृष्ण क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बस हर वक्त उसको यही लग रहा होता है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मुझे कार्य करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। तो हर वक्त क्या है विधि, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित, कि जी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। क्योंकि जीव के जीवन का सबसे बड़ा पाप यही है कि कृष्ण को भूल जाना। जीव जब कृष्ण को भूल जाता है तभी वो अपराध करता है। जब जीव ये भूल जाता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना ही है, तभी जीव पुण्य कर सकता है, तभी यही जीव की विधि है। और जब ये भूल जाता है तो वो अपराध करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई जीव जो है वो भगवान की भक्ति करता है तो उसके प्रभाव से प्रेम उत्पन्न होता है। तो नैष्कर्मीय भावेन विवर्जितागम, फिर क्या होता है कि वो जब नैष्कर्मी हो जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति उसके जीवन में रह नहीं जाती है, नैष्कर्मीय भावेन विवर्जिता है, मतलब वो प्रेम की उस उच्च अवस्था पर पहुंच जाता है कि वो फिर शास्त्र के विधि निषेध पर ध्यान नहीं देता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, स्वयं प्रकाशाय नमो नमस्करोमि, स्वयं प्रकाशाय मतलब भगवान फिर क्या करते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मतलब नैष्कर्म्य भावना से जब किसी जीव की समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं और वो निरंतर कृष्ण के भजन में रहता है, उसके हृदय में, उसके नेत्रों में, उसके मन में, उसकी इंद्रियों में कृष्ण स्वयं अपने आप प्रकट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को नमस्करोमि, मैं नमस्कार करता हूँ। अनुवाद देखिए, हे प्रभु, जिस प्रकार अरणी काष्ठ में अग्नि ढकी होती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक वांग्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते, क्योंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं, अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मन में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता 10.11 में कहा गया है, देशामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन वास्वताम्। अर्थात जिस भक्त ने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण कर रखा है, उसे भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीपक नामक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। इस ज्ञान दीप की तुलना अरणी काष्ठ के भीतर छिपी हुई अग्नि से की गई है। पूर्व काल में यज्ञ संपन्न करने के लिए ऋषिगण सीधे अग्नि नहीं जलाते थे, अग्नि का आवाहन अरणी काष्ठ से किया जाता था। इसी प्रकार सारे जीव प्रकृति के गुणों से आच्छन्न होते हैं तथा ज्ञान की अग्नि यानी ज्ञान दीप भगवान द्वारा ही जलाई जा सकती है। यदि उन्हें कोई अपने हृदय में धारण करे, सवय मना कृष्ण पदारविंदयो, यदि कोई अपने हृदय के भीतर स्थित कृष्ण की शरण कमलों को की शरण गंभीरता पूर्वक ग्रहण करता है, तो भगवान सारे अज्ञान का अच्छेदन कर देते हैं। ज्ञान के दीप से मनुष्य विशेष भगवत कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ उचित रूप से समझ लेता है और स्वरूप सिद्ध बन जाता है। दूसरे शब्दों में, बाह्य रूप से सुशिक्षित होने पर भी भक्त को भक्ति के कारण भगवान भीतर से प्रकाशित देते हैं। यदि भगवान भीतर से प्रकाश दें तो भला कोई अज्ञान में कैसे रह सकता है। अतएव मायावादियों का यह दोषारोपण के भक्ति का मार्ग बुद्धिहीन या अशिक्षित के लिए है, सत्य नहीं उतरता। श्रीमद् भागवतम 5.18.12 में बताया जाता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासेन सुरा। यदि कोई भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है तो उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। ऐसा भक्त वेदों के उपदेशों से ऊपर होता है, वह परमहंस होता है। वैदिक वांग्मय का आवाहन किए बिना ही बिना भी भक्त भगवत कृपा से शुद्ध तथा प्रबुद्ध हो जाता है। भक्त कहता है, अतेव हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येनमाम उपयान्ते, कि जो सततम मेरा भजन करते रहते हैं। मेरा भजन का मतलब क्या है? भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए किसी भी कार्य को, भले आप भगवान के पवित्र मंदिर का मार्जन कर रहे हो, भले भगवान डीटी का श्रृंगार कर रहे हो, उनके लिए वस्त्र बना रहे हो, कुछ भी है, ये सब भजन है। तो जो प्रेम से भगवान का भजन कर रहा है, भले भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है, भगवान के बर्तन साफ कर रहा है या कुछ भी भगवान से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया कोई भी कार्य भजन है। तो भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, जो प्रेम से मेरे लिए कार्य करता है, मेरा भजन करता है, फिर क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ते, मैं उन्हें ऐसी बुद्धि देता हूँ। मतलब अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वेदों शास्त्रों में भगवत प्राप्ति की जो विधि बताई गई है वो हृदय के अंदर भगवान बैठ जाएंगे। जब भजन करेंगे, भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, तो क्या होगा, हृदय के अंदर भगवान क्या करेंगे, तेषामेवान कम पार्थम अहम अज्ञान जमतम, उसके अंदर अज्ञान के कारण जो भी अंधकार है उसको खत्म करेंगे। कैसे, नाशयाम यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, हृदय के अंदर भगवान स्वतः ज्ञान दे देंगे। जो जो ज्ञान चाहिए होगा वो सब वेदों को पढ़ के नहीं, उस जो शुद्ध भक्त होता है ना उसके हृदय में स्वयं एव स्फूर्ति है। और भगवान को प्राप्त करना, भगवान को देखना उसके लिए इस तरह से सरल हो जाता है क्योंकि स्वयं प्रकाश आय न स्वयं प्रकाश है, भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, अपने आप को जना देते हैं। मतलब भगवान को जानना हमारी बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है, सोई जाने जाको देहो जनाए, भगवान को केवल वही जान सकता है जिसको वो चाहते हैं कि मैं वो मुझे जान दे, यानी कि जिसके सामने वो प्रकट होते हैं वो ही भगवान को जान सकते। और किसके सामने प्रकट होते हैं, तो भगवान को तपस्या से नहीं प्राप्त किया जा सकता, भगवान को बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि किसी शुद्ध भक्त की सेवा की जाती है, किसी शुद्ध भक्त के अंडर में रहकर हम भगवत भक्ति करते हैं तो अवश्य भगवान प्रसन्न होते हैं। और शुद्ध भक्त के माध्यम से जब हम भगवान की भक्ति करने का उनको उनसे सीख कर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथाओं में किस प्रकार हृदय लगाकर उनको श्रवण करना चाहिए। तो यदि हम शुद्ध भक्त के पदचिन्हों पर चलकर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। और स्वयमेव स्वयं प्रकाशय, खुद स्वयं हमें हमारे सामने प्रकट होते हैं। और गजेंद्र कह रहे हैं, ऐसे कृपालु ऐसे दयालु भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे संरक्षण प्रदान करने की याचना करता हूँ। एक बार शुरू से पढ़ेंगे, कृपया साथ दीजिएगा। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या
समादाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत्त ईचिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्पर। कालेन पञ्चत्वमिति शुकृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम्। यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभो न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरध्ययानु क्रमण समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधवे चरन्त्यलोक व्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृद समीगति। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोका ययसंभवायय स्वमाययातान् यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणि नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम्। सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टि సర్వ ప్రత్యయ హేతవే అసతాచ్ఛాయయుక్తాయ సదాభాసాయ తే నమః. నమో నమస్తే ఖిల కారణాయ నిష్కారణాయాత్ భూతకారణాయ సర్వాగమామ్నాయ మహార్ణవాయ నమోపవరికాయ పారాయణాయ గుణారరిచ్ఛన్ నచిదూష్మపాయ తక్షోభ విస్ఫోర్జితమానసాయ నైష్కర్మ్యభావేన వివర్జితాయ నైష్కర్మ్యభావేన వివర్జితాగమ స్వయం ప్రకాశాయ నమస్కరోమి. మాతృ ప్రపన్న పశుపాశ విమోక్షణాయ ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ స్వాశేన సర్వతను బ్రహ్మనసి ప్రతీత ప్రత్యక్త్రిషే భగవతి బృహతే నమస్తే. ఆత్మాత్మజాప్తగ్రహవిత్తజనేషు సక్తై దుష్ప్రాపణాయ గుణసంగవివర్జితాయ ముక్తాత్మభిః సుహృదయే పరిభావితాయ జ్ఞానాత్మని భగవతే నమ ఈశ్వరాయ.
హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్కో బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్. కృపయా సాథ్ రహియేగా ఔర్ మేరే లియే ప్లీజ్ ప్రార్థనా కీజియే తాకి మే అప్ని సేవా ఔర్ సాధనా కో అచ్చే సే కర్ సకూ. హరే కృష్ణ.